ini jawaban terang sebutkan di Quran sudah dimana bicara bilang siapa sekian itu kata Quran jadi dimulai nomor Qurannya terbitan di sini.
निषेधात्मक में स्पष्ट हो जाता है, विधि पुष्ट हो जाती है, विधि से साथ में अंतःकरण रहता है, अहम रहता है, और निषेध करने से वो भी मिट जाता है।
प्रबलता तो समझ में आई महाराज, श्रेष्ठता समझ में नहीं है। प्रबलता तो समझ में आई महाराज जी।
अच्छा,
श्रेष्ठता समझ में नहीं है।
श्रेष्ठता यही श्रेष्ठता ही कही मैंने अभी, और श्रेष्ठता क्या हुई कि विधि में मन बुद्धि साथ रहेंगे ना, जैसे झाड़ू दिया जाए तो झाड़ू देने पर कूड़ा करकट दूर हो जाता है, और झाड़ू भी के कूड़ा करकट के साथ में झाड़ू भी साथ में जाते जाते दूर हो जाता है, झाड़ू भी फेंक देते हैं। तो निषेधात्मक में निषेध किया जाए वो वृत्ति भी तो नहीं रहती, विधि में वृत्ति रहती है, विधि होना सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो ऐसा चिंतन होगा तो मन बुद्धि चिंतन साथ में रहेगा ना, ये दो तरह के विशेषण है। आप क्या कहते हैं खास पता नहीं, मैं दो तरह के विशेषण है, ऐसे दो तरह के साधन है, तो दो तरह के विशेषण है, नित्य है, सर्वगत है, स्थान अचल। अब नित्य सर्वगत है ये विध्यात्मक विशेषण हुए, अचल है ये अचल हुआ, निषेधात्मक हुआ, पर चल नहीं है। तो निषेधात्मक करने से वृत्ति भी खुद भी उसके साथ चली जाती है, निषेध में पीछे रहती नहीं। इसमें बोलो क्या समझे?
ठीक है महाराज, समझ में आया। वो निषेध करने के बाद में साध्य की तरफ ही बढ़ता है, फिर वो साधन रहता ही नहीं,
समझ रहे। हाँ, तो रहता नहीं, तो ये जल्दी सिद्धि होती है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुगम है, श्रेष्ठ भी है कि जड़ता है वो रहती ही नहीं, इस बात को लेकर विलक्षणता है। इसी तरह से ये कर्म निरपेक्ष में यही बात है, कर्म सापेक्ष में कर्म साथ रहता है, मन से चिंतन है, मन से अनुसार साथ रहते, मन से ध्यान करना चाहिए, बुद्धि से चिंतन करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, निश्चय करो बुद्धि से, तो बुद्धि साथ रहेगी ना, नहीं तो निषेध कर दिया कि वहाँ पर भाई ये तो वाक न गच्छती, या वहाँ वाणी नहीं जाती, या मन सा न मनु से, मनुष्य मन जा मनन नहीं करता, जा दृष्टि नहीं जाती, वहाँ स्रोत नहीं जाती, तो कोई भी इंद्रिय वहाँ गम नहीं है, इनसे रहित है, तो रहित करने से ये कर्ण स्वतः अलग हो जाता है ना, तत्व से कर्णों को खुद को अलग करना ही पड़ता है, क्योंकि विवेक प्रधान साधन है। विवेक में विवेक दो चीज का अलग अलग जानने का नाम विवेक है। तो विवेक करते करते जड़ता का निषेध होते ही चिन्मयता केवल रह जाती है, तो विवेक फिर विवेक नाम न रहकर बोध हो जाता है। वो विवेक ही बोध में परिणत हो जाता है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है, केवल ज्ञान स्वरूप बोध ही रहता है। निषेध करते करते निषिद्ध वस्तु सब निषिद्ध हो जाती है, तो बात क्या रहता है, वो चित रूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप सत स्वरूप स्वतः जैसा है। एक स्वतः का विधान करें, चेतन है, सत है, आनंद है, घन है, ऐसा कहें, जैसे ईश्वर संस ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर सुग्रासी, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल ये निषेध हुए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहसुराशि, इसमें विधि निषेध दोनों आए, एक 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 विशेष ना विशेष, इसमें भी दोनों आए। तो दोनों होने से बात दोनों से तत्व तो एक ही क्या हो गए, अचल कहो तो उसी को अविनाशी कहो तो उसी को चेतन कहो तो उसी को सुख राशि कहो तो उसी को ही वर्णन तो उसी का ही है, परंतु उसी का वर्णन होना दो ढंग से है, एक निषेधात्मक है एक विद्यात्मक है। ये दो तरह के विशेषण माने गए परमात्मा तत्व के, वास्तव में परमात्मा तत्व के विशेषण नहीं है। ये विशेषण तभी तक है जब तक विवेक है, विवेक में विशेषण होते हैं, और विशेषण ये विवेक न रहकर जब बोध रह जाएगा तत्व एक ही, तब वो विशेषण भी नहीं रहेंगे, विशेषण भी नहीं रहेंगे। उपमा गई नहीं, तो स्वतः सिद्ध हो जाएगा। तो ये बात हमें अच्छी लगती है, साधक के लिए ज्यादा उपयोगी मालूम देती है। भाई हमारे जैसे मालूम दे वैसे हम तो कहते हैं निश्चय से, तो साधक खुद निश्चय करे कि जिस तरह से उनको ठीक बोध हो वैसे करे, मेरा कहना ही करे, ये कोई आग्रह नहीं है। जैसे मैं कहूँ जिसे नहीं करे, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए कई तरह के तरीके हैं, कई तरह के साधन हैं, कई तरह की प्रणाली है, रीति है तरह तरह की। अब किसी के कोई रीति ठीक बैठती है किसी की, ऋषि नाम ऋषि की विशेषता है, किसी की रुचि इस विषय में, किसी रुचि इस विषय में, किसी में। जैसे भूखा आदमी होता है ना, तो भूख एक होती है और उसका जो भूख का दुख है वो भी एक ही होता है, और भोजन करने के बाद में तृप्ति भी एक ही होती है, कुछ नहीं चाहिए, परंतु रुचि एक नहीं होती। भोजन करने की रुचि अलग अलग होती है, कि दाल भात अच्छा लगे, कि साग रोटी अच्छे लगे, किसको हजार रूपए आई अच्छा लगे, किसको सीरा अच्छा लगे, किसी कोई भोजन, किसी को भोजन अच्छा लगे, तो रुचियों की भिन्नता है। इस वजह संसार में दुख और सुख दो है, तो दुख है वो कोई नहीं चाहता, सुख चाहता है, तो सुख चाहता है सुख में एक रूप होगी, दुख नहीं चाहता है इसमें एक रूप हो जाएगी, परंतु जो सुख दोनों रहित होने पर एक होती है, वो विलक्षण होती चीज। संसार में आप देखो तो भाषा अलग अलग है, वेशभूषा अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है, परंतु रोना अलग अलग है क्या? ये मारवाड़ी रोना है, ये बंगाली रोना है, ये गुजराती रोना है, ऐसे रोने में फर्क है क्या? वो भाषा में फर्क होगा, रिवाज में फर्क होगा, पर रोने में फर्क होगा कि भाई ये तो मारवाड़ी रोना है, ये रोना तो गुजराती रोना है, ये तो सिंधी रोना है, इसमें फर्क नहीं होगा, यही समान ही होगा। ऐसे हंसने में फर्क नहीं होगा, हंसने में क्या फर्क होगा, हंसी में चेष्टा और सही हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर हंसना एक होगा, इस अर्थ क्या हुआ, दुख एक है सुख एक है, तो परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुए तब तक दुख एक है, सब में संताप है, जलन है, राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, संताप है, चिंता है, ये एक ही समान होते हैं। और ये मिट जाते हैं तो एक हो जाते हैं, तो एक होकर के फिर एकता होती है। इन दोनों को मिटने पर सुख दुख दोनों सुख दुख के समय कृत्वा इनको समान किया जाए, तो समान जब हो जाते हैं तब योग होता है, समतुल योग हो जाते, समता होने पर उसका नाम योग होता है, उनसे पहले योग नहीं है। दुख संयोग वियोग उसका नाम योग है, दुख के संयोग का वियोग हो जाए तो दुख संयोग वियोग में निषेधात्मक हुआ और समत्व में ये विध्यात्मक हुआ। दुख संयोग वियोग तो संसार के संबंध का विच्छेद और समत्व ये परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का स्वरूप, दोनों को योग कहा भगवान ने। योग की दो ही परिभाषा करी भगवान ने, दुख संयोग वियोगम, तो दुखों का अत्यंत अभाव और समता परमात्मा तत्व की प्राप्ति, फिर दोनों में एक हो जाता है, एक विद्यात्मक है एक निषेधात्मक है। तो निषेधात्मक है वो जो बड़ा श्रेष्ठ है, अच्छा है, उत्तम है, तो निषेधात्मक कहने में साधक के साधारण आदमी है उनके तो निषेधात्मक बढ़िया लगता है। विद्यात्मक यद्यपि साक्षात कहने वाला है, निषेधात्मक साक्षात न कह करके और विधि निषेध से कहता है वो, तो निषेध से कहता है उसकी अपेक्षा विधि से कहता बढ़िया होता है। विधि से कहना है ना वो विलक्षण है, क्योंकि साक्षात कहना है उसको, परंतु वास्तव में परमात्मा तत्व है वो विधि और निषेध दोनों से रहित है। वहाँ ना विधि है ना विषेध निषेध है, ये दो समझने के लिए है। इसने एक दूसरी तरह से बनाया है, जैसे रस्सी में सांप दिख है तो सांप दिखता है, सांप ने भय लगता है तो उसमें कहा जाए भी सांप नहीं है रस्सी है, ऐसा दो कहना पड़ता है उसको। परंतु एक आदमी है तो भय नहीं लगा उसको, सांप का भय तो नहीं लगता पर दिखता सांप है, अगर एक जो भयभीत हो गया जाके तो भयभीत उसको है, उसको दो कहना पड़ेगा कि सांप नहीं है, सांप नहीं है कहना होगा। सांप नहीं है तो विश्वास होगा उसके वक्ता पर, तो सांप का भय मिट जाएगा, उसके बाद कहना सांप है। जिसके भय नहीं है उसको कहना सांप है, ऋषि है सांप है ही नहीं, तो उसको सांप नहीं है ये कहने की जरूरत नहीं, क्यों भय तो है ही नहीं उसको, क्या चीज है ये चीज क्या है पता नहीं है, ऋषि एक सांप है क्या है, ऋषि हाँ वो कर डाली ऋषि ठीक है, उसको एक ही कहने की जरूरत है। तो ऐसे प्राय संसार में है, ऐसे बहुत कम है कि जिसके संसार का असर ना पड़ा हो, राग द्वेष हर्ष शोक राजी नाराजी अनुकूलता प्रतिकूलता ये दो तरह की जिसके नया होती हो, ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे आपको, ये विकारों वाले ही मिलेंगे। तो विकारों वालों के लिए निषेध करना बहुत ज्यादा उपयोगी है, ख्याल रहा ना,
संसार नहीं परमात्मा है,
संसार नहीं है परमात्मा है, तो संसार नहीं का निषेध करना पड़ता है, तो निषेध करना पड़ता है जिनके लिए संसार से विकार पैदा होते हैं। इस वास्ते पहले वैराग्य कहा, तो वैराग्य क्या करता है कि वैराग्य निषेधात्मक का निषेध करता है, तो निषेधात्मक है उसे अलग करते हैं। वैराग्य राग रहित तो हो गया, राग रहित तो होने पर परमात्मा तत्व की प्राप्ति, ये बात बताते हैं, और राग रहते हुए बताते हैं तो राग रहने पर उसे समझ नहीं सकता, सीख सकता है, उनके ठीक बात अनुभव में नहीं आ सकती, सीख तो सकता है, वो सत है, चेतन है, आनंद है, रूप है, ईश्वर है, परमात्मा है, ऐसा सीख जाएगा, परंतु ये जो निर्विकार नहीं होगा, और विकारों को बल मिल जाएगा कि विकार है ये तो मन में आते हैं, क्या बात है, वास्तव में परमात्मा तत्व है ये है, ये बातें बातें ज्यादा रह जाएगी, सीखना ज्यादा रह जाएगा। तो ये कर्म सहित होगा, वह कर्म सापेक्ष होगा और कर्म निरपेक्ष होगा, उसमें निषेधात्म मुख्य चलेगा, विवेक जहाँ रहेगा और निषेधात्म निषेध विशेष रहेगा, तो वो एक उपयोगी ज्यादा होगी बात। रस्सी में सांप में तो रस्सी कहना बड़ी श्रेष्ठ बात है, सांप नहीं है कहना जरूरत नहीं है, किसके लिए दर्द नहीं है कि जिसने सांप से जिसके असर नहीं पड़ा उसको, और सांप से जिसके असर पड़ गया है उसको सांप नहीं है ये कहना बहुत ज्यादा उपयोगी है, रस्सी है ये कहने की जरूरत ही नहीं है, भय मिटा दो फिर क्या है, जो हो चाहे सांप हो चाहे रस्सी हो, रस्सी हो सकती है जल की धारा हो सकती है, माला हो सकती है, पृथ्वी फट गई हो उसमें से दरार हो सकती है, ऊपर कोई मंद अंद साया हो किसी लकड़ी की छाया हो सकती है, ये कहीं हो सकता है,
सांप नहीं जरूरी है,
सांप नहीं है ये जरूरी है, फिर कुछ भी हो कोई अर्ज नहीं है, तो इसकी आवश्यकता ज्यादा है हर एक के लिए, इस बात से कर्ण निष्पेक्ष साधन हमें बढ़िया मालूम देता है इन हेतुओं से। पूर्व मेरे को जाएगा, अब रस्सी है, रस्सी भी हो सकती है, माला भी हो सकती है, फटी हुई पृथ्वी भी हो सकती है, ऊपर कोई वृक्ष की छाया हो तो एक डंडे की छाया भी हो सकती है, वो जल की धारा भी हो सकती है,
भयोत्पादक वस्तु नहीं है,
भयोत्पादक वस्तु नहीं है, तो इसका निषेध करने बहुत आवश्यकता है। संसार के विकार होते हैं, विकारों की तरफ ख्याल नहीं होता, विशेष करके पढ़ाई करा करके तत्व की बात ही विशेष कही जाती है, वही सिखाई जाती है, उसके ही अभ्यास कराया जाता है, उसके चिंतन कराया जाता है, इसमें तो विशेषता से जोर दिया जाता है, परंतु राग द्वेष हर्ष शोक है इस तरफ विचार नहीं किया जाता है ज्यादा, और इसमें विवेक वैराग्य पहले बताया है, साधन साधन चतुर्थ संपन्न हो तो विवेक होगा, विवेक वैराग्य होगा, विवेक होगा तो वैराग्य होगा ही, विवेक होने पर वैराग्य आप साफ हो जाएगा, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, हे उपाधेय का, ठीक विवेक होगा तो विवेक जितना जोरदार होगा साफ उतना ही वैराग्य तेजी का हो जाएगा, हो गई आप साफ ही, निस्तत्व चीज है उसको निकाल देगा, आप रसोई बनाओ साग बनाओ, आप किसी फल को ले तो उसके छिटका भी है, छिड़का दूर कर दिया उसको, ठीक ठीक लिया ये चीज निकाल दी इसे ठीक कर दिया, तो इसके चीज साफ हो जाती है एकदम ही, इस तरह से विवेक है, संसार जो दुखदायी है वो दुखदायी चीज है वो दूर कर दी है, फिर वह है जो रह जाएगा आपसे अभी, वो दूर हो सकता नहीं, ये दृष्टांत में तो दोनों दूर हो जाएंगे, फर्श हो गया दोनों दूर हो जाएगा, पर पारमार्थिक तत्व में आप विचार करोगे तो जड़ता है असत है इसकी ही निवृत्ति होगी, सत की निवृत्ति हो सकती नहीं, संभव नहीं है, असंभव है, वह आप साफ रह जाएगी, उसका निषेध कोई कर सकता नहीं, सामर्थ्य नहीं है, तो वेद से जड़ता का निषेध करना ये मुख्य है, विधि की अपेक्षा ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे ज्यादा संसार को लेकर राग द्वेष हर्ष शोक संसार भय उद्वेग और हलचल जो कुछ हो रहे हैं वो संसार को लेकर के ही हो रहे हैं, अब ये सब रहते हुए इस विचार कुछ नहीं किया जाए, वो सच्चिदानंद है, सत है, व्यापक है, परिपूर्ण है, परमात्मा है, ऐसा ऐसा कहा जाए, विवेचन किया जाए, ये सब विवेचन करने पर वो बातें सीख तो जाएंगे पर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा तो वो हलचल हो जाएगी, कोई मर जाएगा नुकसान हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी नुकसान हो जाएगा, उसके विकार अंतःकरण में रहने वाले ये जल्दी दूर नहीं होंगे, और पहले से निषेध किया जाए बेपरवाह की जाए तो लापरवाही से इस बात से कहा निरपेक्ष चीज है, ये बहुत ऊंची दर्जे की चीज है, बढ़िया चीज है,
साधन की अंतिम सीमा है
ऐसा समझ में आया, अंतिम हो जाएगा, आरंभ और अंतिम जन हो जाएगी, ठीक से हो जाएगा, इस बात से ये बात अपने देखी है कि विवेक ही बोध में परिणत हो जाएगा, विवेक जब तक दो चीज रहेगी तब तक विवेक संज्ञा होगी उसकी, दो पर मिटते ही विवेक नहीं रहेगा, विवेक के ज्ञान हो जाए बोध हो जाएगा। तो बोध वो स्वरूप ही है, तो विवेक में आधा तो बोध ही है आधा अबोध है। और उसमें जो चिंतन करने में वहम तो होता है तत्व का विशेष मानो विशेष इसकी प्राप्ति हो रही है और है दोनों भाषा नहीं विवेक निरपेक्ष में जड़ता का निषेध होता है तो निषिद्ध वस्तु है जो छूट से चल जा रही है और विहित वस्तु विधि विहित है वो होते चले जा रही है और विहित का ही विशेष करके अभ्यास किया जाए श्रवण किया जाए मनन किया जाए इसका चिंतन किया जाए इसका अभ्यास किया जाए तो अभ्यास पोला होता है पोला तो वो अभ्यास इतना काम नहीं देगा भगत पर वो काम नहीं देगा। कैसा लोग उगता जाते हैं क्या करते हैं इस बात से कैसा हूँ मैं पागलपन से नहीं बोलता हूँ मैं होश में बोलता हूँ बेहोश नहीं है मैं पागल नहीं हूँ फिर कैसा कहना पड़ता है उसने जो पागल है ही नहीं है तो तत्व कारण विवेक नहीं कारण रहित है यही तो अब बताया साध साधन के ऊपर एक पंक्ति लिखी थी वो छापट में गलती कर दी वो छापी नहीं है उसमें लिखा था कि साधन और साध्य तो साधन कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष और साध्य कर्ण रहित
विवेचन
में आ गया शीर्षक में लिखी हुई थी कि साधन तो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष और साध्य कर्ण रहित सापेक्ष निरपेक्ष क्या रहित है उसमें वहाँ कर्ण है ही नहीं तो है ही नहीं इसमें पहुंचने में निरपेक्ष वाला जल्दी पहुंचेगा सापेक्ष वाला जल्दी नहीं पहुंचेगा इस आसान ख्याल में
बिल्कुल निर्भयता है।
हाँ
निर्भयता है
एकदम ठीक बोध के पास पहुंचे एकदम नारायण 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 नारायण। आप जितना विभीषण करोगे जितनी शंका करोगे जितने इसमें संदेह उठाओगे जितनी बहुत स्पष्ट होगा साफ होना एकदम